वेलकम।
ओके, सो थैंक यू वर्मा सर इस डिस्कशन के लिए टाइम देने के लिए। बिफोर वी बिगिन, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी। आपका नाम, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप एग्जैक्टली अभी कहाँ पर, कौन से इंस्टीट्यूट में और क्या पढ़ाते हैं?
मैं आरके वर्मा
जी,
उप संचालक के पद पर हूँ स्कूल शिक्षा विभाग में, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रायपुर में प्राचार्य के पद पर, प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हूँ।
ओके सर, और यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं सर?
हमारे यहाँ बेसिकली एक तो प्री सर्विस क्लासेस चलती है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की।
ओके,
इसमें डीएलएड का पाठ्यक्रम हमारे यहाँ संचालित होता है।
ओके,
और इसके अतिरिक्त इन सर्विस ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ चलती है, जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बीच बीच में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ आयोजित होते हैं।
ओके,
तो बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो जो भविष्य में आगे जो टीचर तैयार होने हैं
जी,
उनके लिए प्री सर्विस टीचर एजुकेशन डीएलएड का प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है, जिसमें 1 to 8 के लिए टीचर तैयार होते हैं। और दूसरे एग्जिस्टिंग जो टीचर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग बीच बीच में कंडक्ट करते हैं।
ओके, तो सर आप डीएलएड में कोई कोर्सेस पढ़ाते हैं क्या?
हाँ, डीएलएड में मैडम ये जो एलिमेंट्री टीचर्स को तैयार करने के लिए कुछ पेडागॉजी के कोर्सेस हैं, कुछ सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम हैं।
हाँ हाँ
तो ये 2 ईयर कोर्स है, इसमें
हाँ
फर्स्ट 8 सब्जेक्ट हैं हमारे,
हाँ हाँ
सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं,
जी,
और इसके अतिरिक्त जो व्यवहारिक मूल्यांकन वगैरह होता है उसके लिए भी आर्ट एजुकेशन और आपका योगा एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन
जी
और इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम,
जी,
जिसमें बच्चे स्कूल की वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं स्कूलों में जाकर। 4 सप्ताह का फर्स्ट ईयर में होता है और उसके बाद 16 सप्ताह का सेकेंड ईयर में ये कार्यक्रम पूरा करते हैं। इस तरह से कुल मिला के 20 वीक्स का ये प्रोग्राम होता है।
अच्छा, लेकिन सर आप डीएलएड में कोर्सेज कौन से पढ़ाते हैं? ये सभी आप पढ़ाते हैं? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाते हैं, कोई स्पेसिफिक पेपर?
नहीं, मैं तो खैर बेसिकली मैं तो स्वयं लेता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सीआरटी वगैरह की,
हाँ,
और हमारे यहाँ स्टाफ भी सफिशियंट है।
हाँ,
व्यक्तिगत रूप से तो खैर क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन बीच बीच में मोटिवेशनल कुछ सेशन होते हैं वो मैं जरूर लेता हूँ।
राइट राइट, और सर आप कितने साल से इस मतलब आप डाइट रायपुर के साथ हैं?
मैं अभी तो 23 तारीख को ही ज्वाइन किया है मैंने, इससे पहले भी मैं था रायपुर में, लगभग इसी इंस्टीट्यूट में था, लगभग 2.5-3 साल रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होके बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हुआ, और उसके बाद फिर से वापस यहाँ 23 जून को ज्वाइन किया है मैंने।
अच्छा, पर लगभग आपको 3 साल इस इंस्टीट्यूट में हो गए हैं?
जी जी
अच्छा, और सर जैसे आपने कहा आपके यहाँ पे सिर्फ मतलब टीचर एजुकेशन में देखा जाए तो सिर्फ डीएलएड का कोर्स है, राइट?
जी,
और ये कब से है सर डीएलएड का कोर्स? हेलो,
शर्मा यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम चलता है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो,
हाँ सर बोलिए।
अभी आई आवाज?
हाँ सर अभी आ रही है।
कुछ ओडीएल के कोर्सेस में कांटेक्ट क्लासेस भी हमारे यहाँ होती है।
ओके, ये मतलब क्या है ये?
जैसे डीएलएड पाठ्यक्रम ही सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो होता है,
हाँ हाँ हाँ
उसमें भी हमारे यहाँ स्टडी सेंटर है और उसकी कॉन्टेक्ट क्लासेस हमारे यहाँ कुछ दिनों की होती है।
ओके
और
ओके
इससे पहले जो हमारे जो अनट्रेंड टीचर्स थे स्टेट में, उनके लिए एससीईआरटी की ओर से एक प्रोग्राम डीएलएड ओडीएल मोड में संचालित हुआ था, तो उसमें भी हमारा डाइट जो है वो स्टडी सेंटर था।
ओके लेकिन सर डीएलएड आपके मतलब डाइट रायपुर में कब से चल रहा है, कितने सालों से?
डीएलएड का पाठ्यक्रम तो 1988 में जब हमारे यहाँ ये डाइट की स्थापना हुई
जी
उस समय से ही ये पाठ्यक्रम संचालित है। और ये
ओके
जो जी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पहले ये
जी
डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से संचालित था।
और सर एनसीटीई का अप्रूव्ड इनटेक कितना है डीएलएड के लिए?
एनसीटी का इनटेक हमारे यहाँ 100 का है, 100
अच्छा
स्टूडेंट।
ओके और सर 2019 और 2020 में लगभग कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था डीएलएड में?
हमारे यहाँ 19-20 में 97 बच्चों ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में।
ओके और 2020-22 में?
अभी 20-22 में, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, 2020-21
जी
में 99 बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में 93 बच्चे।
अच्छा ओके सर ओके तो सर मतलब किस तरीके के बच्चे मतलब आपके यहाँ पे डीएलएड में आते हैं, मतलब कितने बच्चों ने आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम उनके 11th 12th में लिया होगा, प्रपोर्शन जानना चाह रहे थे।
13 बच्चे मैथ्स के हैं,
13
हाँ 13,
ओके
और 36 बच्चे जो हैं वो बायो के हैं।
सर एक मिनट आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप कह रहे थे 13 बच्चे मैथ्स के हैं
मैथ्स के हैं, थर्टी
जी
सिक्स बच्चे बायोलॉजी के हैं,
ओके
और बाकी जो है अदर्स आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें हैं।
अच्छा और सर आर्ट साइंस कॉमर्स छोड़ के किसी और स्ट्रीम से बच्चे आते हैं क्या?
नहीं, ग्रेजुएशन में जैसे बी भी है तो वो उसमें आते हैं, क्योंकि बाद में वो मैथ्स के टीचर हो सकते हैं बी जो।
ओके
जी,
अच्छा तो बीई के भी बच्चे
हाँ
ओके ओके तो सर आप आपके बच्चों का एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मतलब आपके यहाँ पे आने वाले बच्चे
जी
कितना प्रतिशत फर्स्ट क्लास मार्क से आते हैं?
एक्चुअल में मैडम ये व्यापम की परीक्षा से आते हैं, व्यापम इनकी परीक्षा कंडक्ट करता है जो प्री डीएट के नाम से संचालित होता है, तो
जी
उसमें कोई कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है।
ओके
जी, बाकी डाइट रायपुर में जो बच्चे आते हैं
हाँ
वो मैक्सिमम बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीस जो है वो कम है, प्राइवेट कॉलेजेस पे बहुत ज्यादा फीस, जैसे मैं
हाँ
अभी इस साल का आंकड़ा दूं तो 60% बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन के हैं,
ओह वेरी नाइस
30% बच्चे हमारे सेकंड डिवीजन के हैं,
ओके
केवल 10% बच्चे हैं जो थर्ड डिवीजन के हैं।
अच्छा अच्छा ओके सर और सर आपका असेसमेंट क्या है इनके एकेडमिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर?
इनके वीकनेसेस को लेकर इनके साथ बीच बीच में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा होते रहता है, और जैसे कंप्यूटर वगैरह के भी जो हमारा जो कोर्स है उसके अंतर्गत कंप्यूटर में भी हम की स्ट्रेंथनिंग करते हैं आईसीटी में भी,
ओके
और अपने धरोहर से जुड़े रहें, अपने समाज से जुड़े रहें, अपने परिवेश से जुड़े रहें, तो इसके लिए हम लोग जो आर्ट एजुकेशन है, कला शिक्षा एवं लोक संस्कृति,
हाँ
तो उसके तहत भी बहुत सारे टास्क इन लोगों को देते हैं, और यहाँ पर भी कुछ चीजें हम लोग उनसे कराते हैं। तो इस तरह से हम प्रयास करते हैं उनके स्ट्रेंथनिंग का विभिन्न एरियाज में।
ओके सर, तो सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका एकेडमिक प्रोफाइल बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के एकेडमिक प्रोफाइल से अगर कंपेयर करना चाहे तो फिर आप क्या कहेंगे?
मुझे लगता है हमारे बच्चे बेटर ही होंगे उनकी तुलना में।
ओके
जी,
और ये आप कैसे कह सकते हैं सर?
कुछ चीजें जो कि आप ऑन रिकॉर्ड
नहीं, मतलब आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं।
मैं जैसे साइंस के जो कुछ प्रोग्राम हमारे यहाँ हुए थे स्टेट लेवल पे,
ओके,
तो उसमें भी दो बच्चे हमारे, चार बच्चे जो है, हाँ, दो फर्स्ट विभिन्न जो उनकी जो प्रतियोगिताएं हुई उनमें से दो में वो फर्स्ट रहे TLM और दो में सेकंड रहे।
हाँ।
तो इस तरह से मतलब यहाँ पर जो जोन स्तरीय प्रतियोगिता वगैरह भी होती है,
हाँ,
तो मुझे लगता है लगातार 4 या 5 साल होगा जिसमें हम लोग रायपुर जोन में, हालांकि इसमें केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस ही, गवर्नमेंट मतलब डाइट से भाग लेते हैं
जी,
इनमें हम लोग चैंपियन रहे, ओवरऑल चैंपियन।
अच्छा, ओके ओके, राइट सर। तो सर आपके यहाँ पे मेल और फीमेल का क्या प्रपोर्शन होगा?
लगभग 60% तो लड़कियां ही हैं, 60 अबव।
अच्छा, ओके। और सर आपके स्टूडेंट्स आपके मतलब डाइट में, आप जैसे कह रहे थे कि एक प्री बीएड एग्जाम होती है, राइट, जिसके तहत वो एडमिशन लेता है, तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो ही होता है क्या?
हाँ, ये एंट्रेंस टेस्ट ही है ये।
ओके, और एक बार फिर उनका मेरिट निकल जाता है, मतलब SERT रायपुर से निकलता होगा मेरिट लिस्ट
जी,
तो फिर इसके बाद उनका वो लोग कैसे आपके कॉलेज में भर्ती होते हैं?
उनकी काउंसलिंग में इनसे ऑप्शन लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, तो उसमें वो ऑप्शन देते हैं और उसके बाद फिर उनके मेरिट क्रम के अनुसार इनको कॉलेजेस मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो अलॉट किए जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अच्छे बच्चे जो हैं वो इधर, क्योंकि फीस कम है, फीस जो है वो 3,000 और 3,500 6,000 दो साल का हमारा मेरी फीस है, और वहां पर लगभग 14,000 और 12 से 14,000 मतलब दो सालों में लगभग 25 से 27,000 खर्च करते हैं वो। तो ज्यादातर मेरिट के बच्चे जो हैं वो इधर ही आना चाहते हैं।
राइट। और सर कितने बच्चे मैथ्स और साइंस टीचिंग लेते हैं DLED में आने के बाद पेडागॉजी सब्जेक्ट में?
ये अभी मैं आपको मैंने जानकारी दी,
मतलब लगभग ही चाहिए, मतलब और उन जो बच्चे लेते हैं मैथमेटिक्स और साइंस उनका प्रोफाइल क्या होता होगा, मतलब किस तरीके के बच्चे ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं?
जनरली जो बी के बच्चे आते हैं,
हाँ,
मैथ्स ही लेते हैं, और जो जो बायो के बच्चे होते हैं,
हाँ,
या कुछ मैथ्स के बच्चे भी साइंस, जो बायो के बच्चे हैं वो साइंस लेते हैं।
ओके
जी,
अच्छा, तो लगभग कितने प्रतिशत लेकिन बच्चे होंगे 100 में से अगर देखा जाए तो मैथ्स और साइंस लेने के लिए?
100 में से 13 बच्चे मैथ्स में और 36 बच्चे साइंस में हैं।
अच्छा, ओके, और बाकी सब आर्ट्स में?
हाँ, बाकी सब। एक्चुअल में क्या है, केवल एक सब्जेक्ट है जो बाइफर्केट होता है, और बाकी 7 सब्जेक्ट इनके कॉमन होते हैं।
अच्छा, ओ, गॉट इट, राइट। तो सर मतलब अभी मतलब जैसे पहले बीएड का कोर्स 1 साल का था, फिर 2 साल का हो गया, राइट, तो डीएलएड का कोर्स हमेशा ही 2 साल का था कि इसमें भी चेंज हुआ है?
नहीं, डीएलएड का कोर्स हमेशा से 2 साल का रहा।
अच्छा ओके ओके, तो आपने कभी बीएड के बच्चों को पढ़ाया है क्या सर?
नहीं, बीएड के बच्चों को के साथ तो इस तरह का अवसर नहीं मिला है।
ओके
जी
ओके, तो सर ये इन बच्चों का सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसा होगा?
जनरली ये जो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सामान्य परिस्थितियों के बच्चे होते हैं, और कुछ तो बीकर और ट्राइबल एरियाज से भी आते हैं, क्योंकि हमारे तीन जिले हैं।
हाँ।
तीन जिले के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो गरियाबंद जिला है।
हाँ।
तो पूरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है
जी।
वहाँ रिमोट एरिया से बच्चे आते हैं। इसी तरह से जैसे फलौदा बाजार जिला है।
हाँ।
तो वो एससी बाहुल्य बेल्ट है, तो और ट्राइबल एरिया भी है।
हाँ।
वहां से भी एससी और एसटी बच्चे काफी आते हैं हमारे यहाँ। एससी के बच्चे विशेषकर बलौदा बाजार से, और एसटी के बच्चे गरियाबंद जिले से। और ये सभी बच्चे सामान्य और बल्कि आर्थिक स्थिति से जो नीचे के वर्ग हैं उस तरह के बच्चे होते हैं।
राइट राइट, तो सर अगर इन बच्चों ने टीचिंग ज्वाइन नहीं किया होता तो आपके हिसाब से इनके ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन क्या होते?
मुझे लगता है यहाँ नहीं आते तो ये बच्चे छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, जैसे बी के बच्चे हैं।
हाँ।
ये तो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में अगर इनको आगे कहीं जॉब नहीं मिला तो ये स्थानीय जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों हैं वहाँ पे या तो छोटा मोटा जॉब कर रहे होते, या नहीं तो बेसिकली क्योंकि ये कृषि से जुड़े हुए लोग हैं।
हाँ।
और इसमें से कुछ बच्चे तो मजदूर वर्ग के भी बच्चे हैं।
हाँ।
तो अगर और कहीं स्कोप नहीं है तो बोलता ये लोग कृषि पर ही आश्रित होते, ऐसा मुझको लगता है।
ओके ओके, तो सर फिर जब ये अभी आते हैं आपके कोर्स में डीएलएड में, तो आपके हिसाब से इनका की मोटिवेशन क्या होगा, क्यों आना चाहते हैं?
प्रारंभिक तौर पे तो बच्चे बच्चों की ये मानसिकता रहती है कि पहले डीएड कर तो ले, हो सकता है यहाँ पे जॉब मिल जाए। जैसे बी के बच्चे हैं खाली हैं तो अभी कर ले
जी।
लेकिन कुछ बच्चे इस तरह का डेडिकेशन लेके आते हैं कि वो टीचिंग जॉब में ही जाना चाहे, तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं। पर हाँ। उनकी संख्या मुझे लगता है 1/4 रहती होगी, और बाकी 1/4 बच्चे तो क्योंकि अभी खाली हैं तो बीएड की योग्यता अर्जित कर लें। 1/4 तो इस तरह की मानसिकता लेके आते हैं। और बाकी जो 50% बच्चे हैं वो यदि टीचिंग जॉब मिल जाता है तो इसमें हम जो भी जॉब मिल जाए
हाँ,
करना चाहेंगे, इस तरह की मानसिकता लेके आते हैं। लेकिन 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो जो टीचिंग जॉब करने की मानसिकता लेके आते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
राइट राइट, तो सर आपके बच्चों को डीएलएड के प्रोग्राम के जो कोर्सेज है 2 साल का, उसमें से सबसे अच्छा क्या लगता है कोर्स में?
मुझे लगता है सबसे अच्छा इनको वो जो खुद जो सब्जेक्ट बाइफर्केशन में जो पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें वो पहले भी स्कूल के दिनों में इस सब्जेक्ट को पढ़े रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाता है
जी।
दूसरे हमारे जो व्यावहारिक परीक्षा के सब्जेक्ट हैं,
हाँ,
जैसे कला शिक्षा और आपका कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट बच्चों का दिखता है।
हाँ।
इंटर्नशिप प्रोग्राम में तो बहुत एक्सेलेंट भागीदारी इन लोगों की रहती है बच्चों की।
जी।
अभी मैंने इंटरेक्ट किया था, जब मैं ज्वाइन किया उसके बाद बच्चों से पहला जो इंटरेक्शन हुआ मेरा
जी,
तो उसमें मैंने स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली।
हाँ।
तो खासकर फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो मैंने काफी मोटिवेटेड देखा, और काफी बच्चों ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया तुलना में सेकेंड ईयर के।
ओके ओके, लेकिन तो सर ये तो चीजें है जो इनको अच्छी लगती है, कोई ऐसे कोर्स होगा या कुछ ऐसी चीजें होगी जो इनको अच्छी नहीं लगती होगी डीएलएड कोर्स के बारे में?
ये जो हमारे जो फाउंडेशन के जो कोर्सेस हैं, जैसे आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा,
हाँ हाँ हाँ
सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम, तो ये कुछ फिलासफी वगैरह से जो साइकोलॉजी वगैरह से ज्यादा रिलेटेड जो सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्सेस के अंतर्गत जो आते हैं उसमें थोड़ा सा इनकी रुचि कम दिखती है।
ओके ओके, तो सर ओवरऑल बच्चे ये 2 साल के डीएलएड प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं?
ये जब से स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मैडम, पहले स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम नहीं था।
अच्छा,
ये लोग क्या करते थे किसी स्कूल में जाके प्रैक्टिस टीचिंग कुछ दिनों का करते थे, तब कुछ पीरियड्स का करते थे, जाते थे फिर संस्था में आते थे। तो वो बहुत फॉर्मल होता था, लेकिन जो नया पाठ्यक्रम आया है 2012 के आसपास शायद आया है, तब से जो स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ है जिसमें स्कूल में बच्चे 96 दिनों के लिए सेकेंड ईयर में, खासकर 4 सप्ताह फर्स्ट ईयर में ये स्कूल का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और स्कूल का ऑब्जर्वेशन करके वहां की परिस्थितियों को देखते हैं और केवल अवलोकन होता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में वो पूरी तरह से स्कूल में इन्वॉल्व हो जाते हैं एक टीचर की तरह, जैसे एक डॉक्टर जो है वो इंटर्नशिप करता है, इस तरह से ये लोग स्कूल में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा बदलाव है और उससे हमारे बच्चे टीचिंग प्रोफेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होके तैयार हो जाते हैं।
राइट राइट, तो सर ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके बारे में बच्चों का क्या ओपिनियन है?
टीटी के बारे में, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम सैद्धांतिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा दोनों को जो नए पाठ्यक्रम में इतने अच्छे तरीके से दोनों को समाविष्ट किया गया है, हमारे बच्चे टीटी के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दूं, जैसे सीटेट की परीक्षा हुई थी 2021 में
जी,
सेंट्रल जो टीटी हुई थी
जी,
उसमें हमारे 30 बच्चे अपीयर हुए थे।
ये 2019 में बोल रहे हैं?
2021 में।
अच्छा 2021,
अभी जनवरी में जो हुआ
जी
सेंट्रल टीटी है, तो 30 में से 20 बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए।
ओ वाओ
जी, तो हालांकि बैठे 30 ही बच्चे, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे तो बैठ नहीं सकते, सेकंड ईयर के बच्चे इसमें बैठते हैं, तो 100 बच्चों में हालांकि 30 ही बैठे, लेकिन 30 जो बैठे उनमें से 20 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो ये एक अच्छा
अच्छा नंबर है। तो सर ये जब बच्चे आते हैं आपके डीएलएड प्रोग्राम में और जब 2 साल के बाद पास आउट होते हैं, तो आपको इनमें किस तरीके का चेंज नजर आता है?
मुझे लगता है एक मोटिवेटेड टीचर जैसे उत्सुक होता है कि मुझे कब टीचिंग जॉब मिले, या जो जैसे आईएएस में जो क्वालिफाई होके लोग आते हैं वो कब फील्ड में काम करने का अनुभव मिले तो हम एक बदलाव लाने की कोशिश करें, कुछ इसी तरह का जज्बा इनमें देखने को आता है कि स्कूल में हम जिन चीजों को देखा है, क्योंकि शाला अवलोकन कार्यक्रम में, शाला अनुभव कार्यक्रम में सारी चीजों का ये विश्लेषण करते हैं और स्कूल में क्या कमियां हैं, स्कूल में हम क्या चीजें आगे कर सकते हैं, वो सारी चीजों का बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं, इसलिए इनमें एक जज्बा होता है कि हम जब भी स्कूल में जाएंगे तो ये बदलाव लाएंगे, या जो चीजें वहां पर इस तरह हो रही थी उनको हम और भी अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे, तो काफी मोटिवेटेड दिखते हैं हमारे बच्चे।
तो सर स्कूल से किसी तरीके का फीडबैक मिलता है आपको बच्चों के प्रेपरेशन से रिलेटेड?
ये अभी बहुत ज्यादा जैसे रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं है, अभी हमारे 14,580 टीचर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी चल रहा है। इससे पहले क्योंकि नियुक्तियां हुई नहीं है तो बहुत ज्यादा ये बच्चे चूंकि टीचर हो नहीं पाए हैं, तो क्या कैसा होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में इनका जो हम फीडबैक लेते हैं, टीचर से फीडबैक लेते हैं, एचएम से फीडबैक लेते हैं, तो वहां पर बहुत एक्सेलेंट फीडबैक टीचर से और एचएम से मिलता है कि ये बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में इन्वॉल्व रहे और एक टीचर की तरह इन्होंने स्कूल में उन दिनों में काम किया, तो अच्छा फीडबैक मिलता है। बाकी एक्चुअल टीचर के रूप में चूंकि अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ नहीं है, अभी रिसेंटली चल रहा है, अभी पोस्टिंग वगैरह चल रही है, तो उस बारे में तो कहा नहीं जा सकता
जी। तो सर जब बच्चे पास आउट होके निकलते हैं आपके कॉलेज से, तो ये आपके साथ टच में रहते हैं क्या, मतलब आपका कोई अलुमनाई ग्रुप है जहां पर आप सब एक साथ टच में रहते हैं?
नहीं, एलुमिनाई ग्रुप तो खैर नहीं बनाया है हम लोगों ने, लेकिन ये जो पीएसटी की हमारी प्रभारी मैडम है उनसे कुछ कुछ फीडबैक लेते रहती है कि वो बच्चे अभी कहाँ हैं, कुछ बहुत ज्यादा तो उस तरह का रिकॉर्डेड हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जो उनके टच में रहते हैं उनसे वो जानकारी जरूर लेते रहती है कि वो है कहाँ, क्या कर रहे हैं।
तो सर ये जब फीडबैक लेते हैं तो आपको आइडिया है क्या कि मतलब ये फीडबैक में बच्चे उनको कोर्स के बारे में कोई फीडबैक देते हैं, या उनको 2 साल का प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में कोई फीडबैक देते हैं, आपको आइडिया है क्या?
ये जब बच्चे यहाँ से संस्थान को छोड़ते हैं
जी,
तो उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि इन 2 सालों में हमने क्या सीखा, आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो कमियां हैं वो भी हमारे सामने लाते हैं कि जैसे स्कॉलरशिप की सुविधा वो मिले तो आगे की पढ़ाई वो कर सकें, हॉस्टल की सुविधा मिले तो आगे की पढ़ाई कर सकें, तो इस तरह का कुछ फीडबैक मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा बॉयज के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन बाजू में पोस्ट मैट्रिक जो पिछड़ा वर्ग और SC ST के हॉस्टल हैं लड़कियों के, वहां पर बच्चियां तो सेट हो जाती हैं, लेकिन लड़कों के लिए हॉस्टल नहीं, तो हॉस्टल की सुविधा हो, कुछ स्कॉलरशिप उनको मिले तो वो पढ़ाई करने में आगे सुविधा हो, इस तरह का फीडबैक जरूर उनसे मिलता है।
राइट, ओके सर। सर आप TET के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि 30 बच्चों ने भरा था फॉर्म और 20 बच्चे पास आउट हुए 21 में, तो आपके पहले का भी कुछ इसी तरीके का होगा 2-3 बैचेस का स्कोर?
मेरे पास मार्च 2019 का CGTET का भी आंकड़ा है, CGTET का जी, तो उस समय 75 बच्चे हमारे सम्मिलित हुए थे और उसमें से 30 बच्चों ने उत्तीर्ण पास किया था।
ये 2019 का है?
19 CGTET।
हाँ, मतलब आपका स्टेट का?
स्टेट का जी।
ओके, कितने बच्चों ने आप कह रहे थे 75 बच्चों ने भरा?
75 बच्चों ने भरा, उसमें से 30 बच्चे क्वालिफाई किए।
ओके सर, ओके।
अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मैडम, ये जो CTET और CGTET का जो आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है
जी,
उसके लिए हम लोगों ने उनकी 1 महीने की यहाँ पे TET पर क्लास लगाई।
हाँ, एक्चुअली वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कोई सपोर्ट देते हैं क्या बच्चों को?
जी।
हाँ, तो सर आप कंटिन्यू कीजिए, आपने 1 महीने का?
हाँ, 1 महीने का की क्लासेस उनके लिए TET पर ही हम लोगों ने लगाई थी।
ओके।
हमारे ही फैकल्टी मेंबर्स ने उनको TET के जो सब्जेक्ट हैं उन पर उनका ओरिएंटेशन किया था। ये शायद उसी का परिणाम है कि इतना अच्छा रिजल्ट जो है
जी
में हमारे बच्चे लाते हैं। जी
जी। तो सर मतलब आपके इंस्टीट्यूट का तो खैर काफी ज्यादा परसेंटेज है पास रेट का, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे पास रेट कम हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकते हैं?
कुछ जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अब बहुत सारी चीजें उपस्थिति को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ये लोग नहीं करते हैं।
ओके,
हाँ उपस्थिति को लेकर हम लोग काफी संजीदा रहते हैं और डिसिप्लिन को लेकर संजीदा रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन भी ऐसा नहीं, हम लोग उस तरह का कोई माहौल बना के नहीं रहते कि बच्चा जो है यहाँ पर प्रेशर महसूस करे, दबाव महसूस करे। हम अपने इंस्टीट्यूट का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं कि बच्चा यहाँ पर आकर बिल्कुल अपने को सुरक्षित महसूस करे, उसको ऐसा लगे कि मैं अपने घर परिवार के बीच में हूँ। शायद इस तरह का माहौल उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह में नहीं मिलता होगा, ऐसा मुझे लगता है।
अच्छा अच्छा ओके सर। तो सर जब ये बच्चों का मतलब अभी आप कह रहे थे कि जॉब्स ज्यादा नहीं है, लेकिन जब 2 साल के बाद बच्चे डीएलएड करके निकलते हैं तो वो करते क्या है फिर, कहाँ वो जॉब ढूंढते हैं?
जनरली बच्चे तो अपने छोटे मोटे व्यवसाय में ही, अपने घर परिवार के व्यवसाय में सीमित रह जाते हैं। कृषि, जैसा मैंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियों में बहुत सारे बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत कम बच्चे जो
है, हाँ सॉरी कह देते हैं,
कुछ प्राइवेट जो मतलब संस्थाएं हैं वहां पर भी बच्चे काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वगैरह टीचिंग जॉब के नहीं निकले हैं, तो कहीं इधर उधर ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मैडम बच्चे, खासकर कृषि के क्षेत्र में ज्यादा बच्चे दिखते हैं अपने।
तो सर ये बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं लेते हैं क्या?
हाँ प्राइवेट स्कूल में भी काफी बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी कोविड के कारण जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भी 2 साल से टीचिंग जॉब वगैरह इनको मिला नहीं, क्योंकि वो भी आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है स्कूलों की। जी जी, तो इससे पहले तो प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे काफी इन्वॉल्व हो जाते थे।
जी जी, तो सर हमने मतलब कितने प्रोपोर्शन, ऑब्वियसली मतलब ये तो खैर पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सभी बच्चों को ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब चाहते तो सभी बच्चे होंगे राइट?
जी,
लेकिन मिलता काफी कम लोगों को है।
जी
राइट राइट, तो सर आपके मतलब इंस्टीट्यूट ने मतलब डाइट रायपुर किसी प्राइवेट स्कूल के साथ अफिलिएशन रखता है क्या प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए?
नहीं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो हम लोगों ने खैर इस तरह का प्रयास नहीं किया है, पर आपका सुझाव अच्छा है कि इस तरह के प्रयास जो है वो आगे कर सकते हैं।
ओके ओके सर। और सर मतलब अगर प्राइवेट स्कूलों में, जैसे खैर आपने तो कहा 2 साल से कोविड है इसीलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके पहले बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में लगते थे उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती होगी सर?
सैलरी तो उनको स्टेट नॉर्म्स के अनुसार देनी रहती है, लेकिन फिर भी आप तो जानती हैं कि प्राइवेट स्कूलों में,
हाँ मतलब गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि जो भी स्टेट कहता है उस हिसाब से, लेकिन प्राइवेट का कितना होता होगा सर, मतलब लगभग स्टार्टिंग सैलरी?
प्राइवेट में भी तो सैलरी तो एक्चुअल में गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 8 से 10 हजार के बीच ही बच्चों को सैलरी मिलती है।
ओके सर। और सर ये बच्चे किसी एनजीओ में भी काम करते हैं क्या जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हो?
नहीं, एनजीओ में मुझे लगता है बहुत कम बच्चे, बहुत मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चे 2-4 कहीं इन्वॉल्व होते होंगे, क्योंकि बेसिकली ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे।
जी जी,
तो और 12वीं पढ़ के ही आते हैं यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 12वीं के बाद ही डीएलएड में ले लेते हैं।
राइट,
तो कम बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह करके आते हैं। इस तरफ ज्यादा मेरे ख्याल से झुकाव या इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं हो पाता,
नहीं होता है। तो सर एजुकेशन में मतलब मुझे पता है कि अगर एजुकेशन में नहीं होते तो वो क्या करते, लेकिन अब एजुकेशन में है तो एजुकेशन से रिलेटेड और कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पर है क्या बच्चों के लिए टीचिंग के अलावा?
टीचिंग के अलावा तो एजुकेशन में और कहीं तो मुझे दिक्कत नहीं है कि ये प्राइवेट जो संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट को हमारे जो औपचारिक संस्थान है उनको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कहीं और बहुत ज्यादा जॉब के अवसर उपलब्ध है।
अच्छा ओके सर, तो सर आपको और आपके कलीग्स को बच्चों को पढ़ाने के वक्त कोई कठिनाइयां दिखती है क्या, मतलब कोई चैलेंजेस जो आप और आपके कलीग्स फेस करते होंगे बच्चों को पढ़ाने के वक्त?
ये अभी कोविड के संदर्भ में जैसे मैं कहूँ,
हाँ,
तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो जैसा एक कॉमन जो प्रॉब्लम है नेटवर्क की समस्या,
हाँ,
है तो मोबाइल फोन उनके पास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में हमारे जैसे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 70-80% बच्चे जो हैं वो उपस्थित रहते हैं।
अच्छा,
लेकिन कोविड में उनके साथ जो सीधे हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाते, मैंने जैसे कल पहले जो बात की शुरू में बच्चों से, उनसे हुई तो मैंने उनसे बच्चों बच्चों से ये पूछा कि सेकेंड ईयर के बच्चों से ये पूछा कि क्या आपको डाइट की याद आती है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ पिछले साल कुछ दिनों की क्लास अटेंड कर चुके हैं 6 महीने और उसके बाद से कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, तो क्या डाइट की याद आती है, ये पहला प्रश्न मैंने उनसे किया था। तो वो दर्द उनका उभर के सामने आया कि फेस टू फेस में बहुत सारी चीजें जो वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो वास्तव में नहीं हो पाता है, और खासकर फर्स्ट ईयर के बच्चे तो इस संस्था में केवल वो अपने असाइनमेंट जमा करने बीच बीच में जो आते हैं वो उस तरह की स्थिति बनती है, बाकी तो वो इस संस्था में आए ही नहीं है फर्स्ट ईयर के बच्चे की। तो 1988 के बाद ये पहला बैच, मैंने उसे मजाक किया कि 1988 के बाद पहला बैच होगा जो बिना संस्था में आए, अगर कोविड की स्थिति ऐसी चलती रही तो बिना संस्था में आए डीएलएड कर लेगा। तो फेस टू फेस में जो एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, उनके साथ काम करने का जो एक आमने सामने मिल बैठ के साथ में काम करने का अवसर होता है, वो चीजें तो मिसिंग है मैडम, वो एक बड़ी चुनौती है ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों के लिए।
राइट, तो सर इसके अलावा मतलब आपको,
इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा
जी।
पर ये जो अभी जो मोहल्ला क्लासेस वगैरह चली है, हाँ, तो हर द्वार जो कार्यक्रम चला है छत्तीसगढ़ में,
हाँ,
हमारे बच्चे काफी इन्वॉल्व हुए हैं क्योंकि स्किल एक्सपीरियंस प्रोग्राम उनको करना था,
हाँ,
तो यहाँ से एससीईआरटी से एक निर्देश आया कि वो अपने गांव के आसपास, अपने गांव या अपने गांव के आसपास ही इस तरह की गतिविधियों में सालानुभव कार्यक्रम करें और वहीं स्कूलों में इस तरह की गतिविधियों में, मोहल्ला क्लास की गतिविधियों में इन्वॉल्व। तो उसका एक अच्छा इम्पेक्ट दिखा कि ये हमारे बच्चे काफी इन्वॉल्व हुए और जब उनसे ऑनलाइन चर्चा होती है तो वो वहाँ के बारे में बताते भी हैं कि किस तरह से मोहल्ला क्लास उनके यहाँ संचालित हुई, किस तरह से पढ़ाई तो हर द्वार में उन्होंने इन्वॉल्व अपना सहयोग दिया। तो वो एक अच्छा अवसर रहा कि साल अनुभव कार्यक्रम में उनको अपने गांव में ही करने का एक अवसर दिया गया और ये जो मोहल्ला क्लास पढ़ाई तो हर द्वार है ये एक अच्छा अवसर लेके आया, आईसीटी के साथ भी काफी फ्रेंडली हुए इस बहाने।
तो लेकिन सर जनरली कोई दिक्कत नहीं होती है ना बच्चों, मतलब ये तो खैर कोविड के टाइम पे था इसीलिए ये सब करना पड़ा, पर अगर रेगुलर क्लासेस होते तो आपको और आपके कलीग्स को कोई दिक्कत आती है क्या बच्चों को पढ़ाने के वक्त?
नहीं, बच्चों के साथ तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती क्योंकि जैसे बच्चों में ये चूंकि 12वीं के बाद आए रहते हैं बच्चे तो इनमें काफी सीखने की एक आकांक्षा रहती है, तो ग्रेजुएशन पीजी के बाद जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा अलग उनकी मेंटेलिटी हो जाती है, लेकिन ये बच्चे चूंकि 12वीं के मैक्सिमम बच्चे 12वीं के बाद आते हैं इनमें काफी सीखने की आकांक्षा रहती है, तो ये बच्चे हर गतिविधि में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की क्लास हो, चाहे वो कला की क्लास हो, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करनी है, तो काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट कराता है।
तो इसके अलावा और कोई चैलेंजेस है आपके कलीग्स को, मतलब सैलरी हो गया या प्रोफेशनल, खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इनफ टाइम और कोर्सेज मिलते हैं क्या आपकी फैकल्टी को?
जी हाँ, फैकल्टी के लिए तो काफ़ी कोर्सेस हमारे उपलब्ध हैं, जैसे आपके निपा वगैरह के जो कुछ प्रोग्राम आते हैं, उसमें लीडरशिप वगैरह की भी कोर्सेस हैं, कुछ सार्टर कोर्सेस होते हैं, और SCRT भी बीच बीच में काफ़ी प्रोग्राम करते रहता है, तो इससे स्ट्रेंथनिंग उनकी होती रहती है। और SCRT के, चूंकि ये डाइट रायपुर बिल्कुल SCRT के बगल में और
अच्छा
राजधानी का डाइट है,
जी
इसलिए SCRT में जो भी कुछ काम होना है, एकेडमिक शैक्षणिक
हाँ
एक्टिविटी होनी है, चाहे वो प्रश्न बैंक का निर्माण होना है, चाहे
हाँ
वो आगे किसी ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स पर्सन तैयार करने हैं, स्टेट रिसोर्स पर्सन, तो
हाँ
चाहे मॉड्यूल तैयार करना है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो उसमें जनरली हमारे डाइट के लोग जाते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है, तो इससे एक अच्छा अपने को स्ट्रेंथनिंग करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और दूसरी
राइट
चीज क्या है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है स्कूलों के, वो हम लोग भी मंगाते हैं जानकारी, और एक एक ब्लॉक का हम लोगों ने प्रभारी बनाया हुआ है अपने टीचर्स
हाँ
को, तो वहां से भी जो चीजें आती हैं उनसे भी अपने को स्ट्रेंथनिंग करने का मौका मिलता है। एक और
राइट
चीज हम लोगों ने यहाँ पर शुरू की है,
हाँ
जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो
हाँ
उस पर लगातार हमारे यहाँ चर्चाएं चल रही, हम लोगों ने एक एक चैप्टर उनको बांट दिया है, और उस पर हम लोग बैठ के, मैं भी बैठता हूँ और हमारे सारे स्टाफ के लोग बैठते हैं, और उस पर चर्चाएं होती हैं, तो इस
हाँ
तरह से अपने आप को भी स्ट्रेंथनिंग करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है। इंग्लिश
हाँ
की वजह से मैंने हमारे स्टाफ से आने के बाद ये जानकारी ली थी, कौन सा उनका एरिया है जिसमें वो अपने को, मतलब अपने में वीकनेसेस पाते हैं, कौन सा
हाँ
ऐसा एरिया है जहाँ पर स्ट्रेंथ है उनकी, तो
हाँ
वो जानकारियाँ भी मैंने ली हैं। तो इसमें भी वीकनेसेस का जो पार्ट है, उसमें जैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में थोड़ी दिक्कत तो सामने आई। अभी हमारे पास कुछ चुनौतियां ये भी हैं, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की समस्या है, तो धीरे से क्रमशः उसको दूर करने में हम लोग लगे हुए हैं। हमारी लाइब्रेरी हम लोगों ने बिल्कुल कंप्यूटराइज कर दी है, कोई भी बुक पुस्तक जो है वो,
ओह
जी, तो ये एक
राइट
तरह का प्रयास हम लोग का।
ओके काफी कुछ होता है सर आपके डाइट में.
हम लोग अपने स्तर पे काफी कुछ करने का प्रयास करते
जी
हैं।
जी एक्चुअली ओके. और सर एनसीटी के रेगुलेशन के तहत कोई दिक्कत आती है क्या आपको उनके गाइडलाइंस से रिलेटेड?
नहीं, एनसीपी के गाइडलाइन से रिलेटेड और कोई दिक्कत तो नहीं आती, पर ये जो शासकीय प्रक्रिया में ट्रांसफर वगैरह होते हैं, तो इनमें प्रॉपर जैसे एनसीटी में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है स्टाफ के लिए, तो कभी कभी ट्रांसफर वगैरह में जो लोग आ जाते हैं तो उनमें प्रोफेशनल कुछ कुछ क्वालिफिकेशन की कमी दिखती है, लेकिन उसको हम लोग जहाँ पर स्वाध्याय से या SCRT के साथ सतत संपर्क में रह के हम लोग उन चीजों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं।
राइट सो आपका डीएलएड जो प्रोग्राम है वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है क्या?
नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं मैडम, ये जो है बोर्ड ऑफ हायर सेकेंड, मतलब ये जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक
अच्छा
शिक्षा मंडल,
ओके
उससे एफिलिएट है।
तो वहां से तो मतलब आपके जो टाइम टेबल बनता होगा या जो आपके एग्जामिनेशन के पेपर्स होते होंगे ये सब यहीं से आते होंगे राइट?
हाँ, बोर्ड से ही थे आते हैं।
बोर्ड से ही आते हैं तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत होती है उनके टर्म्स में या उनके जो टाइमलाइंस है उसमें?
नहीं, बोर्ड के साथ तो अच्छा कोऑपरेशन है हमारा, हमारे टीचर्स वहाँ पर इन्वॉल्व भी रहते हैं ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार करने में, तो इसलिए बोर्ड के साथ तो हमारा अच्छा एक सहयोग है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे कहीं पर कठिनाई होती है तो हम लोग सीधे बोर्ड से ही जाके हमारे फैकल्टी जो है उनसे चर्चा करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।
अच्छा, तो सर आप अभी कह रहे थे ना एनईपी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बीएड के कोर्स को अभी 4 ईयर कोर्स में बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है सर?
नहीं, एक अच्छा निर्णय होगा मैडम। ये तो ये केवल एनईपी नहीं बल्कि 2014 का जो एनसीटी का रेगुलेशन ये तो उसमें भी है। तब से मतलब ये जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है, खासकर प्राइवेट जो तो उनको एक कंपोजिट स्ट्रक्चर में बदलना है।
हाँ,
इस तरह के कोर्सेस, इसमें क्या है कि 12वीं के बाद जो बच्चे आएंगे वो एक टारगेट लेके आएंगे कि हमको टीचरशिप करनी है।
हाँ,
टीचिंग करना है तो वो बीएससी के 4 ईयर या बीए के मतलब 4 ईयर कोर्स में बीए बीएलएड में या बीएससी बीएलएड में एडमिशन ले लें।
हाँ,
तो लगातार 4 सालों की पढ़ाई में वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इस प्रोफेशन के लिए। तो एक अच्छा निर्णय लगता है मुझे।
ओके, तो आपको कोई इसमें चैलेंजेस नजर आते हैं क्या इस 4 साल के प्रोग्राम में?
चैलेंजेस मतलब ये जो एनसीटी के क्वालिफिकेशन के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति,
हाँ,
एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी चीज क्या है, इस 4 ईयर कोर्स के लिए हमारे जो फैकल्टी हैं उनको प्रिपेयर करना, उनका ओरिएंटेशन करना, ये
हाँ,
भी एक चैलेंज होगा।
राइट, और सर आपको क्या लगता है कि बच्चों का जो क्वालिटी होगा, मतलब टीचर्स का क्वालिटी जो होगा 4 साल के बाद, जब ये बच्चे बीएससी बीएड फॉर एग्जांपल करके निकलेंगे एज टीचर्स, इनके क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी क्या, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स होगा?
हाँ बिल्कुल दिखेगा। 4 साल में इनको स्कूल के साथ इन्वॉल्व होने का एक पूरा अवसर मिलेगा। अभी जैसे स्कूलों में जाते हैं, ये सेकेंड ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में ये स्कूल ऑब्जर्वेशन करते हैं, 4 साल में ये पूरी तरह से स्कूल के साथ में इन्वॉल्व हो पाएंगे, स्कूल की परिस्थितियों को समझ पाएंगे और अपने को इस प्रोफेशन के अनुरूप तैयार कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
ओके, राइट राइट, तो सर आपके हिसाब से ये जो 2 साल का अभी चल रहा है प्रोग्राम और जो 4 साल का वो कह रहे हैं कि अभी आएगा इस साल से, आपके हिसाब से ये दोनों चलने चाहिए या कोई एक फिलहाल चलना चाहिए या कैसे होना चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है कि अभी कुछ सालों तक तो ये 2 ईयर कोर्स चलने के बाद धीरे धीरे कम सा इसके स्थान पर ये 4 ईयर कोर्स, ये योजना भी है गवर्नमेंट की, लग रहा है 4 ईयर कोर्स जो है इंट्रोड्यूस होंगे और धीरे से ये जो 2 ईयर कोर्सेस हैं ये धीरे धीरे मुझे लगता है खत्म हो जाएंगे और उनके स्थान पर ये 4 ईयर कोर्स ही संचालित होंगे।
अच्छा, सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है कोविड से रिलेटेड। खैर आपने काफी सारी चीजें बताई है कि कोविड के दौरान आपने क्या किया है, पर जनरली एज अ होल यू नो कोविड ने आपके प्रोग्राम को किस तरीके से अफेक्ट किया है?
कोविड में हम लोगों ने कोशिश तो की है कि ऑनलाइन क्लासेस को जितना ज्यादा इफेक्टिव बना सकें, बच्चों से जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें। ऑडियो वीडियो भी बनाए गए हैं मैडम यहाँ पे और वो बच्चों को उपलब्ध कराए गए हैं। उनसे जो असाइनमेंट वगैरह है बच्चों से पीडीएफ बनवा के हम लोगों ने मंगवाया हुआ है। तो कोशिश तो की है कि कोविड का प्रभाव जितना हम कम कर सकें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फेस टू फेस मोड और ऑनलाइन मोड में अंतर तो आ ही जाता है।
राइट राइट, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, काफी सारे इनसाइट्स मिले जो हमें इस रिपोर्ट के लिए काफी सहायता करेगी।